रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेयं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान राम कौशल्या मां के वहां पहुंचे, हाथ जोड़ के खड़े हैं और कौशल्या मां भगवान की पूजा कर रही है। तब जो है पूजा करने के बाद कौशल्या मां को पता चला कि राम आए हैं। कौशल्या माता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राम जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया। मां ने अपने पुत्र राम को छाती से लगा लिया, नयनों से जल बरसने लगा और मां का स्नेह उमड़ गया, दूध आने लग गया। मां को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई जैसे कोई महान कंगाल आदमी हो और उसको कुबेर के पद पर बैठा दे, ऐसी खुशी हुई। राम का सुंदर मुखड़ा देख करके मां कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे पर बलिहारी हूं, न्योछावर हूं, बोलो लगन में कितनी देर बाकी है, कितनी बजे अब तुमको राजगद्दी पर बैठाया जाएगा। बेटा तुम सारे पुण्यों की शालीनता की आनंद की सीमा हो। हमारे जन्म लाभ की मानो ये सबसे बड़ी अवधि आ गई हो, तेरा जैसा बेटा मिल गया। जिस लगन को सारे अयोध्यावासी चाह रहे हैं कि कब राम गद्दी पर बैठे, राजगद्दी पर बैठे, युवराज बने, उसमें अब कितना समय बाकी है। जैसे चकवा और जैसे चातक और चातकी शरद ऋतु में जो स्वाति नक्षत्र होता है उसमें जो पानी बरसता उसको पीते हैं, अभी नहीं पीते हो। आसोज और कार्तिक में शरद ऋतु में जब वो पानी बरसता वो भी स्वाति नक्षत्र उनको पीता है, बाकी नहीं पीता। तुम तो चौंच बंद कर लेगा, वो कितना ही प्यासा हो लेकिन चौंच बंद रखेंगे, स्वाति नक्षत्र आएगा यूं चौंच खुली कर देगा, पानी पड़े खूब अच्छे रहते हैं। चातक चातकी जिमी चातक चातक की त्रिशित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तो बेटा ऐसा करो, तुम तो अभी जल्दी आ गए तो नहाओ धो और जो तुम्हारे मन में भाए वैसा कुछ मीठा खाओ। देखो कौशल्या माँ है, उसकी मीठा खाओ ये बात कही, ये तो आम दुनिया बोलती है, गोस्वामी जी ने क्या लिखा। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊ जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। ये मधुर कछु खाऊ कहने की क्या बात है, ये सारी दुनिया ही कहती है वही खा लो पी लो मिलो। को राम जी की मां बोलती है उसका कोई विशेष अर्थ होता होगा। जो मन भाव मधुर कछु खाऊ, अरे तुम्हारे जो मन में भाता है ना वो मधुर तुम खाओ। संस्कृत में बोलते हैं खाना बोलते हैं, परंतु अपने आप पशु के लिए चरना बोलते हैं कि चर। तो माने जो तुमको मीठा लगे ना वो तुम ग्रहण करो, खाओगा तुम ग्रहण करो, और गहराई में जाओ। राजगद्दी हो रही है परंतु राजगद्दी में नहीं, तुमको जो मीठा लगे वो तुम ग्रहण करो, तुमको प्रिय लगे वो ग्रहण करो। ये अंदर अंदर की घूमती घूमती बातें हैं। तो इसका अर्थ है कि तुमको वनवास मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं बोलती। बड़ी स्नेह में डूबी हुई मां, मीठा खाओ और फिर तुम अपने पिता के पास जाना भाई। अरे बहुत देर होगी तुमको, तो लो हम तुम्हारे पर बड़ी बलिहारी है, अब तुम जाओ और कुछ नाओ दो और मीठा खा के पिता के पास जाओ। इतने प्रेम के वचन थे, सुनकर के राम जी बड़े प्रसन्न हुए। परंतु देखो, ध्यान देना, राम जी की हालत क्या हुई है। स्नेह रूपी कल्प वृक्ष का जो फूल होता है, उस फूल का जो आनंद रूप मकरंद रस होता है, का वचन उसको सुनकर के भी राम जी का मन भौरा नहीं बना। भौरा होता है वो फूल, फूल का जो रस, रस के अंदर चिपक जाता है, पकड़ लेता है। पर निरख राम मन भवरन भूला, राम जी का मन रूपी भौरा उसमें बिल्कुल भूला नहीं कि नहीं। देखो राम जी के चेहरे पर कितना तेज था, जो केकी से मिलके आए थे और उनको पता था 14 वर्ष का वनवास है, नहीं तो राम जी के चेहरे पर यदि जरा सी कुछ बात होती तो माँ पहले ही कहती बेटा उदास क्यों है, ये तो बोल ही नहीं रही है माँ उदास क्यों है। भरत जी महाराज आएंगे तब यही कौशल्या कहेंगे, क्या बताऊं वो वनवास में गया, उसके चेहरे पर कोई रंगन रागन द्वेष, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कुछ नहीं था। निरखी राम मन भंवरन भूला, धर्म के धुरीण और धर्म की गति जानने वाले भगवान ने माता के सामने बहुत कोमल वाणी से कहा कि माँ, बोलो बेटा, मेरे पिताजी ने जंगल का राज्य दिया है, लेकिन वहां मेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है। जह सब भांति मूर बड़ काजू, कल कहा कि मुनिगन मिलन विशेष बन, लेकिन यहां और ही बात कहे। जह सब भांति मोर बड़ काजू, जहां सब दृष्टि से मेरा बड़ा काम होने वाला है। राम जी का चरित्र देख लीजिए, वनवास में गए तब से लेकर और अयोध्या आए तब तक के बीच में ही रामचरित्र रामचरित्र है, उसके बाद और उससे पहले रामचरित्र सामान्य चरित्र है। दुनिया को जो रामचरित्र का प्रभाव मिला वो अयोध्या छोड़ने से लेकर अयोध्या आने तक मिला, उससे पहले कोई विशेष दुनिया को कुछ नहीं मिला। इसलिए राम जी ने एक चौपाई नहीं, आधी चौपाई में कौशल्या जी को समझा दिया, कि कौशल्या जी थी बहुत ज्ञानवती थी। दशरथ जी तो प्रेमी थे ना, बहुत प्रेमी थे। प्रेम होता है ना वो ज्यादा नहीं सुनता, प्रेम में विशेषता नहीं दिखती। जहां श्रद्धा होती है वहां कुछ विशेषता चलती है, प्रेम में श्रद्धा नहीं चलती। श्रद्धा और प्रेम, देखो भगवान में श्रद्धा हो कि प्रेम हो, तो हम लोगों के लिए तो श्रद्धा हो पहले ही पहले, लेकिन जो ज्ञानी महात्मा होते हैं उनके तो वो प्रेम ही प्रेम मुख्य रहता है। कितनी बड़ाई करे यशोदा जी के सामने जाकर, यशोदा जी को लगता ही नहीं है। कितनी बड़ाई करें कौशल्या जी के सामने कि रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा और मेघनाथ को मारा और ये किया, अरे ऐसे ऐसे मेरे बारे मेरे बच्चे ऐसे हैं क्या, ये तो कर नहीं सकते ऐसा। रावण कुंभकर्ण जी मारे, ऐसे रावण कुंभकर्ण को मारने वाले मेरे बच्चे। अरे कौशल्या माता, आपको आपके बच्चे का बिल्कुल कहना ही नहीं, हमको तो इतना विश्वास ही नहीं होता। ये अतिशय प्रेम होता है, तब अपने प्रेमी में कोई गुण नहीं दिखता है, प्रेम प्रेम दिखता है। कोई जाकर के माँ से कहे कि माँ आज आपका बेटा कक्षा में सब छात्रों से एक नंबर में आया है, माँ को विश्वास नहीं होगा, माँ की पढ़ता तो कुछ है नहीं यार, हरदम खेलता रहता है, एक नंबर में कैसे पास हो गया। माँ को विश्वास नहीं होता, सब विश्वास करते हैं। क्या राम जी ने कहा कि जय सब भांति मोर बड़ काजू, वहां मेरा सब दृष्टि से बहुत बड़ा काम है, इसलिए आप मुझे प्रसन्न मन से आज्ञा दे दीजिए ताकि मेरा मन का जीवन बड़ा पवित्र बड़ा आनंदमय व्यतीत हो। देखो मां, स्नेह के वसीभूत मत होना, जनी स्नेह बस डरपसी भोरे, भोलेपन में भी स्नेह के कारण से डरना नहीं, मेरा मन में भी आपकी कृपा से आनंद ही आनंद रहेगा। बरस चारि दस बिपन बसी करि पितु बचन प्रमाण, 14 वर्ष तक रहूंगा। और देखो क्या बोले कि पिता के वचनों को पालन करें, माँ का नाम नहीं लिया यार, क्यों नहीं लिया, कम से कम राम जी को तो सत्य बात बोलनी चाहिए ना, वो राम वो पिता का ही नाम लिया, माँ का क्यों नहीं लिया, कि वरदान किसने दिया था, तुम कोई दो वरदान हमसे मांग लेना, सबसे पहले आवाज किसकी निकली थी, केकई ने रथ के उस युद्ध के अंदर रथ के संचालन में जो दशरथ जी को सहयोग दिया, उसने ये नहीं कहा था कि सहयोग के बदले में मैं दो वरदान चाहती हूं, ये नहीं कहा दशरथ जी ने, कहा कि दो वरदान मांग लो, दो वरदान तुम मांग लेना कभी, तो सबसे पहले दशरथ जी ने तो कहा, तो वरदान तो दशरथ जी ने दिए, दो वरदान केकी ने मांगे हैं, तो केकी बनवास थोड़ी भेज रही है, पिता के वचनों से मैं वन में जा रहा हूं। बरस चारि दस विपिन बसी करि पितु बचन प्रमाण, आई पाई पुनी देखी हूं, मैं आऊंगा फिर आपके दर्शन करूंगा, आपके पैरों में प्रणाम करूंगा, तुम क्यों इतनी मुरझा गई मां, मुरझाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे भगवान के कोमल शब्द थे, ये वो माता के हृदय में बाण जैसे चुप गए, अरे बेटा 14 वर्ष वन में रहेगा, मां का जी जानता है भाई, बच्चा जब बिछुड़ता है क्या मां का जी होता है, मोह ममता ही होती है, राम जी के लिए तो कोई बात नहीं, और दूसरे अपने बच्चों के लिए ऐसा जी तड़पता हो तो ये मोह कारण होता है। अब क्या हो गया कौशल्या जी के कि सहमी सूख सुनी शीतल वाणी, इतनी बढ़िया शीतल वाणी सुनी कौशल्या जी सूख गई, जिमी जवास परे पावस पानी, एक जवास नाम का घास होता है उसके ऊपर पानी पड़ जाए उसी में सूख जाता है, वो बरसात का पानी बताओ, हम तो बरसात के एक एक बूंद के लिए तरसते हैं पर उसके ऊपर पड़े। अब जवास क्या होता, दो चीज है जवास की, एक तो कोई कहते हैं कोई एक छोटा सा कीड़ा होता है, कीड़ा वो बरसात का पानी पीते खत्म हो जाता है, कोई कहते हैं एक घास होता है, कुछ भी हो बरसात का पानी बहुत बढ़िया लेकिन जवास के लिए प्रतिकूल, ऐसे राम जी की कितनी बढ़िया शीतल वाणी कौशल्या के लिए तो प्रतिकूल। वो ऐसी खड़ी रह गई कौशल्या माता कि जैसे कोई सिंह की आवाज सुनकर के हिरनी खड़ी हो जाए, ऐसे कौशल्या जी खड़ी रही, आंखों से पानी बरस रहा है, शरीर यूं कांपने लग गया। मां जई खाई मीन जनु मापी, जैसे मछली है वो मां जई खाए, वो भी एक तरह का पानी होता है उसको खा लेती है तो वो यूं घबरा जाती है। ऐसे हमारे माता कौशल्या की दशा हो गई। बड़ी गदगद वाणी से अपने पुत्र को निहारती हुई कहने लगी, बेटा ध्यान देना कितनी बढ़िया बात बोलती है, तात पितई तुम प्राण प्यारे, तुम पिता के तो प्राण प्यारे थे, अपना नाम कहीं नहीं आया। भगवान का जो भक्त होता है वो दूसरों के अंदर अपने से ज्यादा भगवान की भक्ति देखता है, उसकी भक्ति बहुत है साहब, उसकी भक्ति बहुत है। तो कहा कि पिताजी की आप में बहुत भक्ति थी ना राम, पिताजी तो तुमको प्राणों से ज्यादा प्यारा मानते थे और तुम्हारे चरित्र सुनते थे, देखते थे तो बहुत प्रसन्न होते थे। देख मुदित नित चरित्र तुम्हारे, भगवान का चरित्र आज तक जिसने देखा वो मोहित हुआ। सती जी ने देखा तो क्या दशा हुई, गरुड़ जी ने देखा तो क्या दशा हुई, नारद जी ने देखा तो क्या दशा हुई, सबकी दशाएं खराब हुई, परंतु देख मुदित नित चरित्र तुम्हारे। दशरथ जी महाराज तो आपके चरित्र देख करके प्रसन्न होते हैं, क्यों? क्योंकि जितने लोगों ने चरित्र देखे ना उन्होंने भक्ति की दृष्टि नहीं रखी, सती जी ने भी परीक्षा की दृष्टि रखी, गरुड़ जी ने अभिमान की दृष्टि रखी। भगवान के चरित्र देख करके प्रसन्नता वहां होती है जहां भक्ति की अंदर भक्ति की दृष्टि रहती है। इसका देख मुदित मन चरित्र तुम्हारे। अरे राजा राज्य देने की बात बोल रहे थे, उन्होंने कितना अच्छा दिन बनवाया सुधवाया, और वो किस अपराध से तुमको वन में भेज रहे, बेटा बताओ ना मुझे सब बात बताओ। ओहो हमारे इस सूर्य कुल के अंदर कौन है जो आग पैदा करने वाला हो गया, क्या बात है, कैसे अपराध बताया गया आपका? तो राम जी ने कहा कि मैं कैसे कहूं, क्यों नहीं नहीं केकई मां के विषय में, केकई मां के विषय में कौशल्या मां को मैं क्या कहूं। देखा राम जी का प्रेम, अपने को तो कह दे मैं सीधे साहब मां ने ऐसा भेजा कि नहीं। राम जी ने कहा नहीं, निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहे बुझाए। राम जी ने अपने सचिव के मित्र सचिव के पुत्र से कहा तुम कहो सारी बात, क्योंकि मेरे मुंह से कहीं कोई शब्द केके के लिए निकल गया तो अच्छी बात नहीं। निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहूं, उसने कहा दो वरदान मांगे माता जी, एक में भरत जी को टीका मांगा है, एक वनवास मांगा है। अच्छा ये बात हुई, एकदम वो तो गूंगी बहरी सी हो गई कौशल्या जी। अब न तो राम जी को ये कह सके कि अच्छी बात है चली जाओ चले जाओ, न ये कह सके कि तुम यहां रहो, दोनों तरफ से ही बड़ी मुश्किल हो गई। मन में सोचती है कि ओहो चंद्रमा लिखने वाले ने राहु लिख दिया, राजगद्दी हो रही थी और जंगल में भेज दिया। ये विधाता सदा उल्टा पुल्टा काम करता ही रहता है, इसको कोई मना करने वाला नहीं है। अब मेरी बुद्धि में धर्म है और स्नेह है, राम में तो स्नेह है और धर्म दृष्टि से मुझे देखना पड़ेगा। अर्थात स्त्री का धर्म क्या होता है, स्त्री अपने पुत्र के स्नेह के अंदर डूबे ये ठीक नहीं है, स्त्री अपने पातिव्रत धर्म में जाए। राम जी को आज्ञा किसने दी है, दशरथ जी ने, कौशल्या जी के पति ने। पति क्या करते हैं उस धर्म पर विचार किया, और पुत्र के ऊपर स्नेह बहुत है। अब मैं धर्म को पकड़ूं कि स्नेह को पकड़ूं, कि स्नेह को छोड़ूं कि धर्म को छोड़ूं, भई गति सांप छुछुंदर केरी। वो सांप है ना, उसने छुछुंदर को पकड़ लिया। अब छुछुंदर को वो गिट जाएगा ना सांप, तो कहते हैं कि वो सांप जो है मर जाएगा, और यदि वो छोड़ देगा तो सांप अंधा हो जाएगा। अब क्या करें बताओ, सांप के पास तो केवल नेत्र ही सब कुछ है, देखने भी काम आते हैं, और सांप नेत्र से ही सुनता है, सांप के कान नहीं होते हैं। उसका नाम चक्षुश्रवा है, चक्षुश्रवा, कान से सुने और कान से देखे। अब यदि वो सांप उसको खा जाए तो उसके मर जाए, छोड़ दे तो अंधा हो जाए, क्या करे वो। भई गति सांप सुंदर केरी, राखऊ सुतई करऊ अनुरोधु। यदि बेटे को रखने की बात कहता कहती हूं तो वास्तव में पति तो कहे तुम जाओ और मैं कहूं तुम रहो, ये बात तो अच्छी नहीं, धर्म जाएगा मेरा। और यदि यहां रख भी लूंगी तो भाई भाई में कहीं टकराट न हो जाए, एक भाई की मां ने वन में भेजा और एक भाई की मां ने उसको जो है एक भाई की मां ने उसको रखने की बात कही, एक भाई की मां ने जाने की बात कही, तो आपस में टकराट होगी। धर्म जाए और बंधु विरोध हो। इसलिए कौशल्या माता तो एकदम संकोच में पड़ गई, क्या करूं, कहूं जान मन तो बड़ा हानि, वन में जाने की बात कहूं तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी, और जो है यहां रखने की बात को तो हो नहीं सकती, क्या करें। बहुत देर तक विचार किया, और भरत और राम तो दोनों मेरे लिए बराबर बेटा है, बहुत सरलता से बोली कि देख बेटा, अब मैं तुमको अपने मन की बात कहती हूं, तुमने जो ये वन में जाने का निश्चय किया ये बहुत अच्छा किया। तात जाऊं बलि कीने वो नीका, तुमने नीका नीक काम किया, बहुत अच्छा काम किया। क्यों, पितु आयस सब धर्म का टीका, सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म पुत्र का क्या है, पिता की आज्ञा का पालन करना। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमको राजगद्दी मिलने वाली थी और तुमको वनवास मिल गया, इस बात में मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे ये दिखता है तुम वन में चले जाओगे, भरत आएगा, भरत पर क्या बीतेगी, और इस अयोध्या के नगरवासियों पर क्या बीतेगी, बस इन दो के ऊपर मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम बिनु भरत ही भूपत ही प्रज ही प्रचंड कले, और दशरथ जी पर क्या बीतेगी, अपना नाम नहीं लिया, यही बात है, वो अपना नाम नहीं लिया, मेरे ऊपर क्या बीतेगी ये नहीं कहा। यदि केवल केवल दशरथ जी महाराज आपको भेजते होते तो शायद मैं भी कह देती कि साहब माता का स्थान ऊंचा होता है, परंतु भाई केकई माता ने कह दिया तो अब तुमको अयोध्या में नहीं रहना चाहिए, अब तो ये अयोध्या ये जंगल है ये सो अयोध्या के समान है, बनदेव तो तुम्हारे पिता है और बनदेवी तुम्हारी माँ है, वहां जंगल के सब पशु पक्षी हैं, ये सब के सब जो है तुम्हारी सेवा करने वाले तुम्हारी प्रजा है। बात तो इतनी है कि राजा को ही वनवास लेना चाहिए था अवस्था देखते हुए, और तुम्हारी अवस्था जंगल में जाने योग्य नहीं है, क्या करें, प्रारब्ध है, उस वन का कितना बड़ा भाग्य होगा जिसमें तुम रहोगे, और अयोध्या का भाग्य तो तुम्हारे जाते ही समाप्त हो जाएगा। यदि मैं कहूं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि साथ क्या चलोगी, मैं तो ले जा सकता नहीं, तुम ये यहां रहने का प्रयत्न कर रही है, ऐसा तुम्हारे संदेह होगा। बाबा मैं ये भी नहीं कहूंगी, तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो, सब प्राणियों के प्राण हो, सबके जीवन हो, अब कैसे कहूं मैं, क्या करूं? ते तुम कहो मात बन जाऊं, मैं सुनी वचन बैठ पछताऊं। मैं तुम्हें ये जो बात कह रही हूं कि तुम वन में जाओ, मैं तो ये बात कहते कहते भी अंदर से बड़ी दुखी हो रही हूं, क्या करूं? मैं ज्यादा झूठा स्नेह बढ़ाने के लिए तो कुछ कहना नहीं चाहती हूं, बस इतना है कि तुम हमको भूल मत जाना, मौके बेमौके हमको याद करते रहना, हमें तुम्हारी बहुत याद रहेगी, तुम हमको याद करते रहना। देखो बेटा, देवता है, पितर है, ये सब तुम्हारी रक्षा करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आग की रक्षा पलक करती है। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, ये जितने अब सगे संबंधी लोग हैं ये सब मछली के समान हैं, और जो 14 वर्ष की अवधि है वो पानी के समान है, मछली पानी में लटपटाती है, ऐसे 14 वर्ष के अवधि के अंदर सब लटपटाते रहेंगे। राम तुम करुणा के सागर हो, धर्म के धुरीन हो, ऐसा विचार करना कि सब अपने जीते जी सब मिले आपस में, कोई चला न जाए, जीते जी सब आपस में मिले। तुम चले जाओगे हमारे लिए तो अयोध्या उजड़ जाएगी, पर तुम्हारे मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न आ जाए। जाओ, आज हमारा सारा पुण्य समाप्त हो गया, आज ये समय भी हमसे विपरीत हो गया। अब देखो, ऐसा कहकर के मां बेटे के चरण में लिपट जाती है। राम जी महाराज के आंखों में जल आ जाता है, बड़े प्रेम से मां को उठाते हैं, मां को उठा करके बैठाते हैं, बड़े विचित्र विचित्र वचनों से उनको सांत्वना देते हैं। समाचार ते समय सुनी सी उठी अकुलाई, उसी समय में सीता जी ने कहीं से सुना कि राम जी को वनवास मिल गया हमारे पतिदेव को, तो वो वहां कौशल्या जी के महल में आई, कौशल्या जी को रोते हुए को राम जी संभाल ही रहे, और ये सीता जी भी आई। जाय सासु पद कमल जुग बांधी बैठ सिरुनाई, सासु जी के चरणों में प्रणाम करके नीचा मुंह करके सीता जी बैठ गई। रोती हुई सीता जी ने, रोती हुई सासु जी ने, कौशल्या जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सीता जी का सुकुमार शरीर देख करके कौशल्या जी और व्याकुल हो गई। सीता जी नीचा मुख किए हुए, हथेली पर यूं रखे हुए, अंगूठे से जमीन को यूं खोदती है, चरणों के अंगूठे से, और आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरते हैं। कौशल्या जी मन में सोचती है कि मेरे पास दो चीज है, सीता जी सोचती है, एक तो मेरा शरीर है, एक मेरा प्राण है, इन दोनों में से किसने ज्यादा पुण्य किया है कि जो राम जी के साथ चलेगा, प्राण चलेगा कि शरीर चलेगा? ऐसा विचार करती करती सीता जी व्याकुल हो रही है, रो रही है, और अंगूठे से जब वो जमीन के ऊपर जो खोदती है तो चरणों के नूपुर आवाज करते हैं, वो नूपुर आवाज करते हैं, वो क्या कहते हैं कि सीता जी आप पति के साथ वन में जाओगी तो आप हमें छोड़ मत देना पीछे, क्योंकि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, वनवास केवल राम का है, आपका तो राम जी के साथ जाना हो रहा है। आप आभूषणों का त्याग करके नहीं जाएंगे, आप हमको अपने चरणों में स्थान देंगे। मनहु प्रेम बस विनती करही, हमई सीय पद जन परिहरही। सीता जी को देख करके और ज्यादा कौशल्या जी रोती हुई राम को कह रहे, हे राम सुनो, ये क्या हो गया, ये मेरी सीता तो बहुत सुकुमारी है। सीता अपने सासू और ससुर के लिए बहुत प्यारी है, बहुत लाड़ रखते हैं सब। इसके पिता है वो आज संसार के सब राजाओं में श्रेष्ठ हैं। इनके ससुर है वो सूर्य कुल के सूर्य हैं। सीता का जो पति है वो सूर्य कुल रूपी कमल वन का चंद्रमा है। अनुपम रूप निधान है, गुण निधान है। ऐसी जाने कितने कितने पुण्यों के प्रभाव से मैंने पवित्र पुत्र वधु प्राप्त की है। जब से सीता यहां आई तब से मैंने इसको अपने आंखों की पुत्री बना करके रखा है। मैंने इसे अपने छाती से लगा करके रखा है। जिस प्रकार से कल्प बेल जिम्मे बहुविधि लाली, कल्प लता को कोई पालता है, ऐसे ही मैंने इसको स्नेह का जल देकर पाला है। अब इस लता के अंदर जब फूल फल आने का मौका आया तो विधाता ने इस लता को सींचने ही नहीं दिया। जाने अब क्या परिणाम होगा मैं कह नहीं सकती हूं। मैंने तो पलंग के पीठ के ऊपर ही इसको रखा, मैंने इसको गोद में रखा और हिंडोलों में झुलाया। अपने घर की फर्श के ऊपर भी कभी गलीचे से कोई खाली कोई कमरा नहीं रखा कि मेरे सीता का चरण है वो बहुत कोमल है, वो गलीचे के ऊपर रहे, कठोर भूमि पर इसका पैर भी न टिके। संजीवनी बटी को जैसे सुरक्षित रखा जाता है ऐसे मैंने इसको संजो संजो करके रखा है। किसी भी काम के लिए भी मैंने नहीं कहा कि बेटा तुम दीपक तो बुझा दो, दीपक बुझाने में क्या जोर आता है, वो काम भी मैंने इसको नहीं दी कहा। सीता के आंसुओं से, सीता के हाव भाव से ऐसा लगता है कि सीता भी शायद वन में जाने के लिए प्रार्थना करेगी। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमी जोरी। ये सीता तो सदा चंद्रमा की किरणों की रस की चकोरी बनकर के रही है, अर्थात जो चंद्रमा का रस पीने वाली ठंडक में अनुकूलता में रहने वाली है वो रवि रुख नयन सकई किमी जोरी। वो सूर्य के अंदर अपने आंख कैसे मिलाएगी, इतनी गर्मी रहती है सूर्य में, अर्थात वनवास की कठिनता को कैसे सहन करेगी। राम तुम विचार करो, हाथी सिंह निशाचर दुष्ट जीव जंतु ये तो जंगल में बहुत रहते हैं। जंगल के अंदर जहरीली जहरीली पौधे वगैरह की वाटिकाएं लगी हुई होंगी, तो ऐसे समय में सीता जी का वहां जाना कैसे उचित है। जंगल में तो भीड़ियां रहती हैं, कोल जाति की स्त्रियां, कोल किरात किशोरी ये रहते हैं। ब्रह्मा जी ने उनके लिए जंगल बनाया है। पत्थर का जो कीड़ा होता है वो पत्थरों में रहने पर कोई कष्ट का अनुभव नहीं करता, जंगल में रहो, उनको कोई कष्ट नहीं होता। और एक तपस्वी लोग होते हैं जो जानबूझ करके तपस्या के लिए जंगलों में रहते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होता। मेरी सीता तो ऐसी नहीं है, न तो ये कोल किरात किशोरी है, माने न तो कोल की बेटी न किरात की बेटी है, और न ये तपस्या के योगी इसका शरीर है। तुम ही बताओ राम, सिए मन बसई तात कई बाधी, सीता जंगल में रहेगी कैसे? ध्यान से सुनना कितनी बढ़िया गूढ़ बात कौशल्या जी बोलती है कि चित्र लिखित कपि देख दे राती। चित्र में लिखे देखे हुए, चित्र में चित्रित किए हुए बंदर को देखकर डर जाती है। अरे माँ, ये बंदर ही काम आएंगे सीता जी के। जिस बंदर को देख करके डरने की बात कहती हो, ये बंदर को ही देखेगी। सबसे पहले लंका में बंदर को ही देखेगी, तब इसके प्राण में प्राण आएंगे। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। एक हंस की बेटी, देवताओं के बड़े सुंदर तालाब के पास में रहने वाला कमल वन, उस कमल वन में घूमने वाली हंस कुमारी, वो यूं ही घास फूस कटीले वृक्षों पर दौड़ेगी। इसलिए आप सीता जी को शिक्षा दो राम, सीता यहीं रहे, यहां रहेगी तो हमको सहारा मिलेगा। सीता को देख देख करके हम जिएंगे, नहीं तो हमारे तो कोई आधार ही नहीं रहेगा। राम जी ने कहा, ठीक बात बोलती है माता जी। अब राम जी सोचते हैं कि उपदेश तो देना चाहिए, पर अपने से बड़े जहां बैठे रहते हैं वहां उपदेश कैसे दिया जाए। बहुत शील और स्नेह का ध्यान रखते हुए राम जी महाराज अब सीता जी को बात बोलते हैं। देखो, सीता जी को जो बात राम जी यहां बोल देंगे, वो वनवास में कहीं नहीं बोलेंगे राम जी। ये रास्तों में तो राम जी बोलेंगे ना, यहां पूरी रामायण अपनी बताई देंगे वो। और कौशल्या जी का और सीता का और राम का, तीनों का जो संवाद है, गोस्वामी जी महाराज ने इतना सुंदर रखा है। परिवार में ये आधार होते हैं, सासू बहू और पति। एक तरफ सासू है और एक तरफ पति है और एक तरफ ये सीता स्वयं है। तीनों जने वहां पर बातें कर रहे हैं ना, तो कैसे पति अपनी माँ को और अपने पत्नी को लेकर चले, और सासू का व्यवहार अपने बहू के प्रति कैसा हो, और बहू का बर्ताव सासू के प्रति कैसा हो, पिता और पति के प्रति कैसा हो। तीनों को खड़ा करके ऐसा सुंदर दृश्य उपस्थित कर रहे हैं, सब लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है। मां तो समीप कहत सकुचाई, बोले समाउ समुझ मन माही। माता के पास कुछ बोलने में राम जी महाराज संकोच कर रहे हैं, परंतु फिर भी कहते हैं कि देखो राजकुमारी, तुम्हें हमारी शिक्षा माननी चाहिए। हम जो भी आपको बात कहें उसमें कोई दूसरा अर्थ मत लगाना। अब देखो ये बात ध्यान से बत कह रहे हैं। देखो, आपन मोर नीक जो चाहे हो, तुम हमारा और तुम्हारा दोनों का यदि हित चाहती हो तो तुम हमारी बात मान करके घर में रह जाओ। माने हमारी, हमारा और तुम्हारा दोनों का हित देखना चाहते हो तो यहां गलती होगी। यहां राम जी पकड़े गए। राम जी ने कहा कि आप मेरा और अपना दोनों का, आपन मन अपना और मोर दोनों को जो ठीक लगे ना, उस हिसाब से तुम्हारा यहां रहना ठीक है। सीता जी ने पकड़ लिया राम जी को, क्या ऐसे कैसे होगा, जो आपके लिए होगा उसके लिए जा रही हूं मैं मेरे लिए नहीं जा रही हूं, आपके लिए जा रही हूं, आपके लिए। आपने कहा ना कि दोनों का भला होगा तो यहां रहो, दोनों का भला होगा तो यहाँ रहे, और एक का भला हो जिसमें आप ही का भला हो तो राम जी ढीले हो, तब तो चलना ही पड़ेगा। ये बातें तो अपने को चौपाई से निकालनी होगी, सीधी सीधी कह देंगे तब तो फिर अपनी बुद्धि का क्या करेंगे भाई। आपन मोर नीक जो चाहे हो, अपना और मेरा दोनों का यदि मंगल चाहती हो तो तुम यहां रह जाओ। सीता जी ने कहा मेरा मंगल नहीं चाहती, मैं तो आपका चाहती हूं। आयस मोर, मेरी आज्ञा है तुम सासू की सेवा करो, तुम सब प्रकार से बहुत अच्छी हो, सास ससुर के सेवा के समान संसार में दूसरा कोई स्त्री का धर्म है ही नहीं। जब जब मेरी माँ मुझे याद करे तब तब तुम उनके पास में बैठ करके मेरी बातें करते रहना, तो मेरी माँ को धीरज बनेगा, कथा पुराण सुनाते रहना। अब देखो कथा पुराण सुनाते रहना हो, सीता जी सब सुन रही है बातें। कथा पुराण का अर्थ है कि हर रामावतार में सीता कभी भी राम को छोड़ करके अयोध्या में नहीं रही। अब मैं ये कथा सुनाऊंगी क्या कि राम वन में गए और मैं आपके पास बैठी हूं, तब तब तुम कई कथा पुरानी और सुंदरी समझाए मृदुबानी, कहू सुभाव सपत सत मोई सुमुखी मातुई तो राखू मैं सो मैं मेरी मैं सौगंध खा के कहता हूं मैं मेरी सौगंध खा के तुमको कहता हूं कि सुमुखी मातुई तो राखू तो ही। अब राम जी महाराज के यहां तो राम जी की सौगंधों के ऊपर अयोध्या कांड टिका हुआ है। मंथरा ने कहा कि राम जी की सौगंध खाए तब, केके ने कहा राम जी की सौगंध खाए तब, दशरथ जी भी कहते हैं कि राम जी की सौगंध, राम जी कहते हैं कि मेरी सौगंध। ये राम जी सौगंध खाने के लिए राम जी बचे यहां अयोध्या में। तो कहो स्वभाव सफल सत्म होई सुमुखी मात हुई तो राखो तो ही। देख भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि हट करने से किसी को भी सुख नहीं मिला। जो गुरुजनों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, धर्म की बात के अनुसार जो चलते हैं उनको बहुत बिना किसी परिश्रम के उनका कल्याण हो गया, उन्होंने बहुत ऊंचा फल प्राप्त किया। और हट किया नहुष ने, राजा नहुष ने यह हट किया तो उसकी क्या दशा हुई भाई, स्वर्ग में गया हुआ नीचे गिर गया, स्वर्ग में गया हुआ। तो देखो दिन जाते समय नहीं, दिन जाते कोई समय नहीं लगता, बहुत जल्दी दिन चले जाते, बातों ही बातों में चले जाते हैं, दिवस जात नहीं लागे ही बारह। देखो जब आदमी परमात्मा की तरफ चलता है, अच्छे काम में लगता है ना, तो उसका जो है बड़ा दिन भी छोटा हो जाता है, और जब आदमी पापों में चलता है तब उसका छोटा दिन भी बड़ा हो जाता है। अब ये बात राम जी सीता जी को कैसे कह सकते थे कि दिवस जात नहीं लागे बारा, इन बातों की जरूरत कहां थी सीता को? सीता को जरूरत थी लंका के अंदर, लेकिन लंका में राम जी कैसे सुनाएंगे, अभी तो लंका में पहुंचने की बात ही नहीं है। इसलिए पहले उपदेश दे दिया कि कभी भी कोई दिन आए दिवस जात नहीं लागे बारा, और कहा कि देखो हट और प्रेम ये दोनों एक साथ नहीं निपते हैं, बड़ा भारी जंगल का काम है भाई, कंकर पत्थर होते हैं और वहां पर पैदल वगैरह चलना ही मुश्किल हो जाता है। तुम बहुत कोमल शरीर वाली हो, भूमि शयन बलकल बसन आसन कंद फल मूल ये तुमको मिलेंगे वहां, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पर राक्षस लोग खूब फिरते रहते हैं और कपट वेश विधि कोटिक करें, वो कपटी वेश बना बना करके न जाने क्या क्या लीला करते हैं पता नहीं है। ये बात आज कह दी, क्योंकि रावण राक्षस है, कपट वेश में आएगा, राम जी पहले से ही सावधान कर देते हैं। इसलिए हंस गवनी तुम किसी प्रकार से वहां जलने योग्य नहीं हो, ऐसी सब बात कही। और ये भी कहा कि देखो यदि आप चलोगे तो मेरी बात नहीं मान करके चलोगे तो सो पछिताई अघाई और अवश्य होई हित हानि, तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा और उस पश्चाताप के करने पर आपका हित भी नहीं होगा। अपने पति के बहुत कोमल शब्द सुने सीता जी ने, बहुत सुंदर शब्द सुने, परंतु वो कैसे थे? चकई शरद चंद जी निशी, चकई शरद चंद निशी, जैसे जैसे चकवा है वो शरद ऋतु के चंद्रमा को देखता है ना, तो वो उस समय में जलता है वो। इसलिए सीता जी के शीतल वचन, राम जी के शीतल वचन भी सीता जी के हृदय में जलने लग गए, दाहकता पैदा की उन्होंने। सीता जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, सीता जी ने प्रणाम किया सासू जी को और फिर कहा कि देखो माता जी, मेरे अभिनय के लिए आप क्षमा करना, मेरा जिसमें हित होता है मेरे पतिदेव ने वो शिक्षा दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक बात तो सुनो कि इस संसार में पति के वियोग के समान कोई जंगल का दुख हो सकता है क्या? वनवास का दुख हो सकता है क्या? इसके अलावा कोई भी दुख हो सकता है क्या? पति के वियोग के समान तो संसार में कोई स्त्री के लिए दुख है ही नहीं। हे प्राणनाथ, आपके बिना तो मुझे देवलोक भी नरक के समान प्रतीत होता है। एक स्त्री का माँ बाप भाई बहन पुत्र परिवार धन संपदा सास ससुर जो कुछ भी है वो तभी अच्छे लगते हैं जब उसका, जब वो पति के साथ रहती है। पिय बिनु तियाई तरणी उते ताते, पिता के बिना तो वे सब सूर्य के समान जलाने वाले होते हैं। पति के बिना सब चीज शोक का घर है। जिस प्रकार से नदी के अंदर जल न हो तो नदी की कैसी शोभा होती है, ऐसे ही पति के बिना स्त्री की दुर्दशा होती है। तो महाराज, आप चाहे कुछ भी कहो, या तो आप मुझे साथ में ले चलो, और नहीं ले चलोगे तो मैं क्या करूं, मेरे प्राण शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। राख ही अवध जो अवध लगी, रहतन जनी ही प्राण, मेरे हाथ की बात थोड़ी, मेरे प्राण चले जाएंगे। मैं वन में रहूंगी, सारे दुख भूल जाऊंगी, आपके चरणों का दर्शन करूंगी। अच्छा, आपने कहा कि वन में इतना कष्ट होगा, पैदल चलना पड़ेगा, आप नहीं चलोगे, आपके पसीना आएगा तो मैं आपके हवा करूंगी, आपको जल ला करके दूंगी, आपका बिछौना बना दूंगी, पद पकार बैठी तरु छाई, आपके चरण धो करके छाया में आपको बैठाऊंगी, आपके शरीर के ऊपर पसीना आया होगा तो उस पसीने से मैं अपने कपड़े से उनको पूंछ दूंगी, मैं बार बार आपके चरणों का और मधुर स्वरूप का दर्शन करके वनवास के सब दुखों को भूल जाऊंगी। ऐसे कठोर वचनों को सुनकर के भी मेरे प्राण यदि नहीं निकले हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे प्राण न जाने क्या क्या भयंकर कष्ट सहने वाले हैं। सीता जी रोने ही लग गई वहां पर। राम जी ने देखा कि भाई अब इसके प्राण बचने मुश्किल है, तब राम जी महाराज ने कहा कि भाई ठीक है सीते, परिहरी सोच चलो बन साथा, मन में चिंता मत करो और तुम चलने की तैयारी करो। अब कोई न तो विषाद करने का अवसर है न कोई और अवसर है, अब तुम जल्दी से जल्दी तैयारी में लग जाओ। बेग की प्रजा दुख मेटब जाई, कई प्रिय वचन प्रिया समझाई, लगे मातुपद आशीष पाई, प्रणाम किया और प्रणाम करके और वे वहां से जाने के लिए तैयार होते हैं। सीता जी ने कहा कि देखो माँ, मैं बड़ी अभागिनी हूं, सेवा के समय में मुझे भाग्य ने कहां का कहां भेज दिया, मैं अब वन में जाना ही पड़ेगा, लेकिन आपकी सेवा से वंचित हो रही हूं, इस बात की मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। सीता ही साथ सीता जी ने खूब अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद राम जी महाराज सीता जी को लेकर के अपने महल की ओर आ गए। चली नाय पद पद्म सिर अति हित बार ही बार। अब लक्ष्मण जी महाराज आने वाले हैं। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम।
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
या वर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाली
की जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं
की जय
जय जय